بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحزن. درس نمبر 13. پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک خاص ٹاسک میں آپ کو دوں گی, اور وہ میں نے آپ کو سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کا فرق بتا کے شروع کیا تھا کہ سیلف کنٹرول جو ہے, بہت سی جگہوں پر ہم سیلف کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیلف ڈسپلن سیکھیں اور اپنے آپ کو ایسا ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ انسان بنائیں جو اپنا ہر کام ٹائم پہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور اپنا ہر کام صحیح طرح کرنے کی, ہر چیز کو اس کا حصہ پہنچانے کی اور ہر گتھی کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو, بجائے اس کے کہ وہ ایک لمحاتی دباؤ میں آ کے اپنی فیلنگز کو دبا لے اور پھر بعد میں وہ نگیٹو طریقے سے پروڈیوس ہوں. تو اگر آپ نے وہ والا درس نہیں سنا ہوا تو وہ سن لیں پلیز, اور اس کو سمجھ لیں. اس کے ساتھ جو میں نے تصویر بھیجی تھی وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں سے ہر ایک پوائنٹ سمجھ چکے ہوں. آج جو ہے انشاءاللہ ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں. یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فرسٹ تھنگز فرسٹ, اور یہ اسٹیفن کووی نے اور ان کی وائف جو ہے میلنڈا آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ایگزیکٹلی کیا نام ہے, مجھے بھول گیا ہے, لیکن ان کی وائف نے ان کے ساتھ مل کے یہ کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ریسرچ پریزنٹ کی ہے کہ ہم نے کلچرز کا اور مذاہب کا اور لوگوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ بیسیکلی چار بیسک ٹینٹس ہوتے ہیں اس کے ہر ایک کام کے. جب بھی ایک انسان کوئی کام کرتا ہے, جب بھی ہم کوئی انڈرٹیکنگ لیتے ہیں, تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ جیسے امریکن گروز جو ہیں وہ اس کو مائنڈ باڈی فٹنس کے نام سے بیچتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ بھی بڑا سٹرونگ ہو اور آپ کی باڈی بھی بڑی سٹرونگ ہو تو آپ بڑے کامیاب ہوں گے اور آپ خوش ہوں گے. اسی طرح جو ہندو مت والے ہیں وہ اس کو یوگا کے نام سے بیچتے ہیں کہ یوگ جو ہے, جو یوگ لے لیتے ہیں وہ لوگ فزیکلی بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور مائنڈ بھی ان کے بڑے شارپ ہو جاتے ہیں, اور وہ بڑے اسپریچول اسپیکٹ سے بھی وہ لوگ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی طرح جو بدھ مت کے فالوورز ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو سمادھی, میرے خیال میں یوگا میں بھی سمادھی کہتے ہیں, اور جو بدھ مت کے فالوورز ہیں وہ بھی اس کو سمادھی کہتے ہیں, یا ایک اویکننگ جو ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے اصولوں کو فالو کریں تو آپ فٹ بھی ہو جائیں گے, آپ کے جسم, آپ کوئی خاص قسم کی خوراک کھانے کو وہ کہتے ہیں, اور کوئی خاص قسم کی ایکسرسائزز ہیں, اور اس میں اسپریچول ایکسرسائزز اور میڈیٹیشنز بھی ہیں. تو ان سب چیزوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے اسٹیفن کووی نے, اور انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی ہے فرسٹ تھنگز فرسٹ. حالانکہ ان کی جو یعنی کہ سب سے ریولوشنری کتاب ہے وہ سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, لیکن پرسنلی چونکہ میں ان کی ورک شاپس بھی اٹینڈ کر چکی ہوں اور میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں, اگر آپ نے ایک اسٹیفن کووی کی ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے, جو دنیا میں بہت ہی ابھی تک, یعنی ان کی موت کے بعد, یہ 70s کا فلسفہ ہے لیکن ابھی تک اسے کوئی بیٹ نہیں کر سکا ہے, تو اگر وہ چیز آپ نے سیکھنی ہے تو آپ شروع فرسٹ تھنگز فرسٹ سے کریں, اور جو چیز میں آج آپ کو بتا رہی ہوں وہ اس کا انٹروڈکشن ہے. تو فرسٹ تھنگز فرسٹ کے اصولوں کے مطابق ہماری خوشی جو ہے, ایک خوش زندگی جو ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے مل کے بنی ہوتی ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے, اور ہماری جو سوچیں ہیں اور ہمارے جو ایٹیٹیوڈس ہیں اور پھر ہماری جو عادات بنتی ہیں, وہ ساری مل کے ہماری ایک پرسنالٹی بناتی ہیں. جیسے ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا, جہاں میں نے آپ کو پاسٹ کے بارے میں پڑھایا تھا کہ جب ہم پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو ہماری وہ سوچیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے سارے ریئیکشنز کو شیپ کرتی ہیں, اور ہم ان سوچوں کی روشنی میں لوگوں کو مختلف قسم کے رسپانسز دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ رسپانسز جو ہیں وہ ہماری عادات بن جاتے ہیں, اور وہ عادات ٹوٹلی بار بار جب ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایٹیٹیوڈس بن جاتے ہیں, اور وہ ایٹیٹیوڈس مل کے ہماری پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اگر ہم نگیٹو माजी की यादों में बैठे रहेंगे और लोगों को ब्लेम करते रहेंगे और बिटर रहेंगे, तो हमारी पूरी पर्सनालिटी एक बड़ी बिटर और डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी बन जाएगी। तो इसी तरह जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का फ़लसफ़ा है वो ये कहता है कि इस दुनिया में खुश रहने के लिए और इस दुनिया में कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़िंदा रहना है, यानी कि हमने सांस लेनी है, हमने चलना फिरना है, हमने खाना पीना है। ये जो फ़िज़िकल चीज़ें हम करते हैं, पानी पीना है, ये जो जितनी भी फ़िज़िकल चीज़ें हम करते हैं, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। यानी ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये जो हम हैवान हैं, तो हयात से निकला है, हम एक ज़िंदा जानवर हैं, ज़िंदा हैवान हैं हम, और उस ज़िंदा हैवान को ज़िंदा रखने के लिए कुछ मुस्तकिल ज़रूरियात हैं जो उसने पूरी करनी है, जिनमें सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि उसने खाना पीना है, उसने सांस लेनी है, उसने पानी पीना है, अगर वो बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल की ज़रूरत होती है, उसने लोगों के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल रखना है। तो ज़िंदा रहना जो है वो इस ऑर्गेनिज़म की पहली ज़रूरत है। अगर हम वो ज़िंदा रहने की जो ज़रूरियात हैं, अगर हम उनसे लापरवाही बरतेंगे और कोताही बरतेंगे, तो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है वो गिर जाएगी। और इसको आप ऐसे समझ लें कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज़म है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हड्डियां हैं और मसल्स हैं और रगें हैं और नसें हैं और शिरियाने हैं, वरीदे हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, इसमें हमारा दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं। तो हर एक पार्ट का हमने ख्याल रखना है कि वो ज़िंदा रहे, और ना सिर्फ वो ज़िंदा रहे बल्कि वो ऑप्टिमली फंक्शन करता रहे। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये जो हम हैं, स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये एक ख़ास किस्म की मेंटेनेंस चाहता है। और ये मिसाल आप इससे समझें जैसे किसी के पास एक गाड़ी है, और वो गाड़ी जो है उसने उसकी ठीक टाइम पे सर्विस करनी होगी, उसने ठीक टाइम पे इसका ऑयल चेंज करना होगा, उसने ठीक टाइम पे सारे काम करने होंगे, और उसके बाद ही उसकी वो गाड़ी जो है वो ऑप्टिमली परफॉर्म करेगी और वो गाड़ी उसकी वैसी खिदमत करेगी जैसी वो चाहता है। तो ये मेंटेनेंस जो है, स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, इसको ज़िंदा रहने का जो हिस्सा है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के फ़लसफ़े का, उसमें एड्रेस किया गया है। और उसमें यह है कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हमारे ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचाती हैं, मसलन अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी खाएंगे और बहुत ज़्यादा चिकना खाएंगे और गंदी बाजारी चीज़ें खाते रहेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शुगर से भरी हुई पीते रहेंगे, तो हमारा ये जो ऑर्गेनिज़म, हमारा जिस्म है, हमारा सिस्टम, ये बीमार हो जाएगा, हमारा जिस्म ख़राब हो जाएगा, और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी। फिर हम बहुत से ऐसे काम नहीं कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं, और वो चीज़ हमें फिर उदास करेगी और हमारे स्ट्रक्चर को भी वो नुकसान पहुँचाएगी। दूसरी बड़ी बात न्यूट्रिशन के अलावा जो है, जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इन हड्डियों को और इन मसल्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है, वरना फिर हम बहुत से ऐसे काम नहीं कर सकेंगे जो हम करते हैं। तो हड्डियों और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम सबको पता है हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमें वर्जिश करने की ज़रूरत है, हमें वॉक करने की ज़रूरत है, हमें अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना है, और उसके लिए एरोबिक एक्सरसाइज जो है, जैसे वॉकिंग है या साइकिलिंग है या स्विमिंग है, इस तरह की एक्सरसाइजेज, या जो ख़वातीन जैसे घर के काम करती हैं तो उसमें भारी काम जो घर का है, तेज़ी से वैक्यूम चलाना और पोछा लगाना और एक्टिवली एक चीज़ डस्टिंग करना, यानी इतना कि इंसान को पसीना आ जाए और उसके दिल की रफ़्तार जो है वो जितनी बीट्स पे दिल धड़क रहा है वो उससे कम से कम 20 या 25 बीट्स ज़्यादा हो जाए, और फिर वो 20 या 25 बीट्स ज़्यादा ही रहे कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए। तो ये एक बड़ी आसान सा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो ये स्टेट अटेन करना बहुत आसान है। इसीलिए मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ यार डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्वेटिंग, प्लीज़ आप स्वेटिंग से ना डरो, ये तो अल्लाह ने एक ऐसा हमें मैकेनिज़्म दिया है कि पसीना जब हमें आता है तो आप ये समझें कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है, हमारी पूरी जिल्द और हमारी मसल्स और हमारी आर्टरीज और हर एक चीज़ जो है वो उस वक्त सांस ले रही होती है एक्टिवली। ये एक निशानी है, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसके साथ हम मॉइस्चर निकालते हैं। आप कभी आईने के ऊपर या शीशे के ऊपर जैसे हम हा करके करते हैं और उसके ऊपर एक धुंध सी आ जाती है, भड़ास सी आ जाती है, वो जो धुंध है या वो जो भाप है वो मॉइस्चर है जो हम सांस के साथ निकाल रहे हैं। तो जब आपके जिस्म में से पसीना बहता है तो आप ऐसा समझें कि आपके जिस्म का एक एक सेल जो है वो सांस ले रहा है और वो सांस लेकर अपने अंदर खालिस और अच्छी ऑक्सीजन डाल रहा है और गंदी और बेकार चीज़ें जो हैं और टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो उनको निकाल रहा है और वो हमारे पसीने के साथ बाहर निकलती हैं। तो ये एरोबिक एक्सरसाइज का मैं आपको बता रही हूँ, उसके फ़ायदे हैं ये। ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें, इतना कि हल्का सा पसीना आ जाए। इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप कितनी आसानी से ये स्टेट अटेन करते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए मैंने आपको एक न्यूट्रिशन समझाई, जो खालिसतन न्यूट्रिशन जो है उसको हमने नहीं वायलेट करना और हमने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और हमने उसमें ना ज़्यादती करनी है और ना कमी करनी है। कमी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो हम ये स्टूपिड किस्म की डाइटिंग्स करते रहते हैं कि जी आज से मैंने कोई चिकना नहीं खाना, ये जो है ना प्लीज़ ये छोड़ दें, ये मेडिकली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको कह रही हूँ अगर आप अंडे की जर्दी नहीं ना खाते तो प्लीज़ हफ्ते में 2 अंडे खाना शुरू कर दें। जितने भी मर्द और हजरात आपकी फैमिली में हैं, जितनी ख्वातीन हैं, जो भी उनकी उम्र है, प्लीज़ उनको कहें कि आप हफ्ते में, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 और 250 से ज़्यादा है और आप एक्टिवली यानी खुदा ना खास्ता आपके दिल में कोई स्टेंट पड़ी हुई है तो हफ्ते में 1 अंडा खाएं, फिर भी 1 अंडा ज़रूर खाएं और पूरा खाएं जर्दी के साथ। आप जाके गूगल पे ये रिसर्च देख लें, कोलेस्ट्रॉल से जिससे वो हमें डराया करते थे अमेरिकन मेडिसिन वाले, अब वो उसको कोलेस्ट्रॉल मिथ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बंद नहीं करना, बैलेंस डाइट खानी है, ठीक है जी। तो मैंने डाइट आपको बता दी, एक्सरसाइज बता दी, इस तरह नींद है, हमारी नींद के तकाजे हैं वो हमने पूरे करने हैं अपने जिस्म के लिए। तो इस जिस्म को मेंटेन करने के लिए जो हम काम करते हैं वो ज़िंदा रहना या लिव वाला हिस्सा जो है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का वो है। उसके बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट के फ़लसफे में जो अगली चीज़ है वो है टू लव, यानि मोहब्बत। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे अल्लाह मियाँ कुरान में कहता है कि आदम को उन्होंने बनाया और फिर आदम में से उसका जोड़ा बनाया और आदम को कहा कि ये आपकी ये जौजा हैं, आपकी जौजा को हमने क्रिएट किया है आप में से, लितस कुनुफीहा, ताकि आप उसमें सुकून हासिल करें। यानी कि इस रिश्ते का मकसद जो है वो सुकून है। ये तो सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता मैं आपको बता रही हूँ। जो मोहब्बत यानी कि लव का जो फ़लसफ़ा वो बयान करते हैं वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करें, आप अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं, आप अपने सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करें। ये बड़ी ज़रा सेल्फिश सी बात लगती है, लेकिन जो ख़ुद से मोहब्बत नहीं करता वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता, ये याद रखें। अगर किसी ने अपने आप को निगलेक्ट किया तो वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जिनसे वो मोहब्बत करना चाहता है वो उन लोगों को निगलेक्ट करना शुरू कर देगा अपनी फ्रस्ट्रेशन और दुख की वजह से। तो दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है मोहब्बत करना। जो भी काम करें मोहब्बत से करें। जिस काम से आपको मोहब्बत नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उसमें इंटरेस्ट डिवेलप करें और या फिर वो काम छोड़ दें, कोई और काम शुरू कर दें। ये बड़ी मुश्किल डिमांड है जो मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पूरी बात मेरी सुनें और इस पे गौर करें तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि एक खुश ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें वो काम करने हैं और हमें वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का मतलब यानी वी आर रियली इन लव विद देम, और हम वो काम करना चाहते हैं, हम उन लोगों के करीब रहना चाहते हैं और हम उन लोगों को खुश रखना चाहते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो दूसरा हिस्सा जो इसका था वो है मोहब्बत करना। और जब मैं आपको इसके आगे मिसालें दूंगी तो आपको समझ आएगा कि हम हर काम में ये मोहब्बत का उनसर कैसे डाल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ वो बताते हैं, और वो हैरत की बात है कि वो मोहब्बत से नीचे है। पहले ज़िंदा रहना है, पहले ज़िंदा तो रहना है, तो ज़िंदा रहेंगे तो फिर मोहब्बत करनी है। हर काम से, हर इंसान से, हर किताब से, हर चीज़ से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, ठीक है जी। उसके बाद है लर्निंग, टू लर्न यानी कि इलम हासिल करना। तो तीसरा जो वो एंगल बताते हैं एक खुश ज़िंदगी का, वो ये है कि एक खुश ज़िंदगी, एक खुश इंसान जो होता है वो सारी उम्र एक तालिब इलम होता है, सारी उम्र वो इलम की तलाश में होता है। एंड दैट पर्सन इज़ आउट टू लर्न, जो भी उसको दरपेश आता है, जैसे उसको बड़ी बात अगर करें, जैसे उसको कोई बड़ा फेलियर मिला है और किसी बड़े हादसे से दो चार हुआ है वो खुदा ना खास्ता, तो वो उसमें से सीखेगा। जो नाकाम लोग हैं और जो डिप्रेस लोग हैं और उदास लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट वाली नहीं है, जिनकी ज़िंदगी प्रायोरिटीज़ पे मबनी नहीं है, वो क्या करेगा, वो मायूस हो जाएगा, वो उसमें से कोई अच्छी बात नहीं सीखेगा और वो यही कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बजाय सीखने के और बजाय अपने आप को इम्प्रूव करने के और बजाय अपने आप को खुशी की तरफ ले जाने के। जो नाकाम लोग होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइंड नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किसने किया और अगर ऐसा ना हुआ होता तो फिर कैसा होता। लेकिन जो कामयाब लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी प्रायोरिटीज़ पे मबनी है, जिनको अपनी तरजीहात का पूरी तरह पता है, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ है। और ये कुरान में भी है कि वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर इन्हीं के ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं और इन्हीं की तरफ फिर ये फलाह पाने वाले हैं, ये मुफ्लिहून हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ पे ड्वेल नहीं करते, किसी चीज़ के साथ फंस नहीं जाते, चिपक नहीं जाते, वो हर एक चीज़ को अपने लिए एक सबक समझते हैं और वो उसको सीख के आगे बढ़ जाते हैं, उसको सीख के वो एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और इस तरह एक तो नाकामियों से वो घबराते नहीं हैं, नाकामियों से उनको डील करना आता है, और दूसरा ये है कि हर नाकामी के साथ वो एक बेहतर इंसान बनने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो बड़ी कामयाबी से हमकनार होते हैं। तो इलम हासिल करना जो है वो टू लर्न, ये तीसरा एंगल है जो फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट के फ़लसफ़े में है। जिनकी तरजीहात ठीक होती हैं, जिनको अपनी तरजीहात का पता होता है, उन्हें ये पता होता है कि जो भी काम हम करेंगे उसमें हमने सबसे पहले तो उस काम में हमें ज़िंदा रहना है, हमने किसी पहाड़ से वैसी छलांग नहीं लगा देनी है, फिर हम ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। खुश तो हम हो जाएंगे, एक्साइट भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है मोहब्बत करना। जब ज़िंदा रह रहे हैं, जब आप ज़िंदा हैं, तो फिर आपने प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदा रहना है, क्योंकि ये अल्लाह की नेचर है और ये अल्लाह के रसूलों की नेचर है और ये अल्लाह के सब अच्छे इंसानों की नेचर है कि वो मोहब्बत के साथ ज़िंदा रहते हैं। वो किसी बात को, किसी चीज़ से, किसी बात से, किसी काम से वो नफ़रत नहीं करते, ठीक है जी। तो जो आप कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि आप उनसे मोहब्बत करें और ख़ुशी से हर काम करें। तीसरी बात जो है वो ये है कि वो मुसलसल इलम हासिल करते हैं। तीसरा एंगल जो है फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट का, वो ये है कि हर काम में एक तरजीह ये होनी चाहिए कि इस काम से हम क्या सीख रहे हैं। और अगर किसी काम से आप कुछ नहीं सीख रहे, तो उसको कुरान में क्या कहा गया है, लगवियात, वो लगव बातें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वइज़ा मर्रू बिल्लगवी मर्रू किरामन, और जब इबादुर्रहमान जो हैं, अल्लाह के बड़े बरगुजीदा बंदे जो हैं, जब वो लगव बातों पर से गुज़रते हैं, तो वो उसके ऊपर बड़े ग्रेसफुली और ख़ामोशी से और चशम पोशी करते हुए गुज़र जाते हैं, वो उनकी तरफ़ देखते भी नहीं हैं, ठीक है जी। तो हर चीज़ में ये एंगल देखना है कि हम इससे सीख क्या रहे हैं और इससे हमारे इल्म में कितना इजाफ़ा हो रहा है। उसके बाद फाइनली जो फाइनल चीज़ वो बताते हैं तरजीहात में, और ये याद रखें, ये हर रिश्ते की और हर काम की और हर जॉब की और हर एक्शन की तरजीहात हैं जो फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट में पढ़ाई गई हैं। तो फाइनल तरजीह जो है वो ये है टू लीव अ लेगेसी। और लेगेसी जो इंग्लिश का लफ्ज़ है उसको जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो बनता है मीरास, ठीक है जी। लेकिन वो ऐसी मीरास नहीं है कि वो एक मटेरियल मीरास है, एक बंगला है, एक घर है, एक बैंक बैलेंस है, वो भी है, लेकिन लेगेसी का मतलब है एक इखलाकी मीरास छोड़ के जाना, एक ऐसी चीज़ छोड़ के जाना दुनिया में जिससे दुनिया आपको याद करे और जिससे दुनिया को यानी रहती दुनिया तक और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उसको लेगेसी कहते हैं। तो हमारी ज़बान में या कुरान की ज़बान में फिर उसको सदक़े जारिया कहते हैं, टू लीव अ लेगेसी, यानी एक कामयाब ज़िंदगी जो ठीक तरजीहात पे मबनी होती है, जिसकी प्रायोरिटीज़ ठीक होती हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, ज़िंदा रहना है, टू लिव, उसके बाद है मोहब्बत करना, टू लव, उसके बाद है इलम हासिल करना, टू लर्न, और उसके बाद है एक काबिल कदर मीरास और सदक़े जारिया अपने बाद दुनिया में छोड़ के जाना, या टू लीव अ लेगेसी, ठीक है जी। चार बातें मैंने आपको बताई हैं, तस्वीर भी मैं आपको भेजूंगी, जितनी दफ़ा आपका दिल चाहता है आप ये लिखें, लेकिन ये बातें आपने इंटरनलाइज करनी है, क्योंकि ये आप समझें कि ला तहज़न जो है ना, ला तहज़न जब आप किसी को कहें ना कि यार ला तहज़न, गम ना करो, तो ये वो ला तहज़न का फॉर्मूला है, ये उसकी चाबी है। ये जो चार बातें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे और अगर आप इन इनके मुताबिक अपना हर एक काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ला तहज़न का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए हमने आप सबको जमा किया है और हम आपको ये नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पूरा हो जाएगा। एक भी अगर कोई ये समझ गया और उसने आगे किसी को बताया, तो मैं ये समझूंगी कि हमारा काम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ है। फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट, बहुत दफ़ा पढ़ाई गई है, बहुत दफ़ा मैंने खुद वर्कशॉप्स में बताई है, लेकिन मसला इसके साथ क्या होता है कि जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो लंबी लंबी वर्कशॉप्स होती हैं, चार चार घंटे की, छः छः घंटे की, वो उस वक्त तो बड़ा सर धुनते हैं, ओ यार क्या बात है, यार क्या फ़लसफ़ा है और कितना सिंपल करके बता दिया है, लेकिन वो इसको अप्लाई नहीं करते। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसी भी फ़लसफ़े की तरह, कुरान की तरह, जिस चीज़ को आप अप्लाई नहीं करेंगे उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो मेरी आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है और ये मेरा ऑर्डर है आपको एज योर टीचर कि आपने आज से इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है जी। तो मैं एक छोटी सी आपको मिसाल भेजूंगी, जिसमें जैसे एक टाइम टेबल बना हुआ है और उसमें टाइम्स लिखे हुए हैं और उसमें आपने हर एक चीज़ याद रखनी है अपना। तो मैं आपको ये एक ऐसे छोटी सी एग्जांपल, जैसे मैं अपनी डायरी लिखती हूँ तो मैंने वैसे एक डमी डायरी लिखी है, चंद ऐसे ही एक आपको समझाने के लिए। वैसे मेरे जहन में अब यह है कि मैं आपको वाकई अपना डायरी का पेज जैसे सैंपल की तरह भेज देती हूँ, तो आप वो अपने लिए भी बना सकते हैं। जिस बुक में मैं दर्स लिखती हूँ असल में वो मेरी डायरी है, तो मैं उसमें से एक पेज आपको बग़ैर यानी खाली पेज आपको भेज दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपके लिए दो मिसालें यहाँ पे रखी हैं, और एक सिंपल काम, जैसे एक तो स्पिरिचुअल कोई काम है जैसे फजर की नमाज़ है, तो मैंने आपको फजर की नमाज़ के साथ वो जो ये जो चार एस्पेक्ट्स हैं, टू लिव, टू लव, टू लर्न, टू लीव अ लेगेसी, चार एस्पेक्ट्स, चार प्रायोरिटीज़ मैंने आपको बताई हैं कि हर काम जो है आपने वो इस एंगल से करना है। जो भी काम, जैसे आप कहें कि मैं सुबह फजर के लिए उठ रही हूँ, तो आपको ये चारों एंगल उस काम के पता हों कि जब मैं ये चारों काम फजर के वक्त में करूँगी तो मेरा मकसद जो है वो बड़ा सही तरह पूरा होगा, मेरी प्रायोरिटीज़ बड़ी अच्छी तरह पूरी होंगी, ठीक है जी। तो मैंने तो इसमें मिसाल बच्चों की दी है, टू लीव अ लेगेसी में मैंने हर जगह काफ़ी बच्चे लिखे हैं, लेकिन जैसे अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को इन बच्चों की जगह रख लें। अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, अकेली रहती हैं, तो फिर जो आपके साथ रहने वाले मे बी आपके मेड हैं, आपके नौकर हैं, मकसद ये है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो फ़ायदा उठाएँ आपके इस एटीट्यूड का, ठीक है जी। तो एक मैंने बड़ी दुनियादारी वाली चीज़ लिखी है जैसे ईद शॉपिंग, और एक मैंने फजर की नमाज़ की मिसाल आपके लिए लिखी है। ये गौर से देखें, इन्हें समझें, जो भी आपने सवाल पूछने हो मुझसे पूछें, लेकिन आपने कल से, यानी आज बैठ के डायरी लिखनी शुरू करें और कल जो है आपने अपना दिन शुरू करना है इन चार उसूलों के मुताबिक। आपके जितने भी एक्शंस हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेरी कौन सी तरजीह पूरी हो रही है, किस तरह पूरी हो रही है, और अगर वो कोई एक्शन ऐसा है जैसे वो लगव है लेकिन आपको बड़ा शौक़ है उसे करने का। लगव से मेरा मतलब है जैसे टीवी देखना, मेरे ख्याल में टीवी देखना लगव है। वैसे मैंने कल इलेक्शन में देखा है, 2-3 घंटे देखा है, लेकिन जैसे वैसे एक ड्रामा देखना, तो फिर आपको बहुत उससे बड़ी मोहब्बत है आपको, मुझे पता है। ठीक है, आप देखें ड्रामा, कोई मसला नहीं है उसमें, आप खुश हो रहे हैं ड्रामा देख के, लेकिन आपने बाकी तरजीहात उसमें देखनी है। मे बी ड्रामा देखते हुए आप एक्सरसाइज करें, मे बी आप ट्रेडमिल करें, मे बी आप साइकिलिंग करें, मे बी उस ड्रामे में कोई ऐसी स्पिरिचुअल बात हो जिससे आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन अगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ने का अहतमाम करना है, क्योंकि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ मीट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए है। आपने फ़िट होना है लिव के लिए, आपने अपने हर काम से मोहब्बत करनी है लव के लिए, आपने इल्म हासिल कर, जो काम आप कर रहे हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जहाँ पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे आप सोशलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपने इल्म हासिल करना है। अगर आप वहाँ से कुछ नहीं सीख रहे तो प्लीज़ वो उसको छोड़ दें। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने प्रायोरिटीज़ और तरजीहात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है तो उस ज़िंदगी में फजूलियात का और लगवियात का और वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ों का की कोई जगह नहीं है, बल्कि वो चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं। पहले भी मैंने आपको कहा था कि वक्त को ना ज़ाया कीजिए वरना वक्त आपको ज़ाया कर देगा। तो अब जिस तरह आज बहुत ज़्यादा लोग मिलके, मैंने नोट किया है ये इलेक्शन के बैकग्राउंड में, जैसे बहुत ज़्यादा लोग मिलके हारने वाली पार्टियों को बुरा भला कह रहे हैं, उनके मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। होगा उनमें, वो सारी नेगेटिव बातें होंगी। देखें जी, अब तो वो हार गए हैं ना, अब वो हमारी तरजीह नहीं रहे हैं, बस ख़त्म। ठीक है जी, उसमें टाइम ना ज़ाया करें, पॉजिटिव बातें। हम अब आगे जो हैं हम क्या करेंगे, इन नए रूलर्स को क्या करना चाहिए, ये कैसे कामयाब होंगे, हमें खुद अपनी ज़ाती लेवल पे सर्कल ऑफ़ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ़ कंसर्न हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे सर्कल ऑफ़ इन्फ्लुएंस में क्या है। हम ये जो हम बड़ा कह रहे हैं नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, हम कल क्या नया करेंगे कि ये नया पाकिस्तान वाकई नया पाकिस्तान हो। हैं जी, अपने घर के बाहर 2 दरख्त लगा दें प्लीज़, नए पाकिस्तान की खुशी में। पाकिस्तान को दरख्तों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ठीक है जी, अपने गांव में कुआं खुदवा दें, फिर तो बिल्कुल ही नया पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान पानी की कमी हुई हुई है पाकिस्तान में। हैं जी, तो ये है कि अपने एक्शन से हमने ज़ाहिर करना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक होनी चाहिए एक कामयाब ज़िंदगी के लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको, बात ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको 2 दफ़ा सुननी पड़े, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल करके बताई है, और आप इन मिसालों को गौर से देखें और इन्हें समझें, और इंशाल्लाह कल मिलने के वादे के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।